हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक की बातें सुनकर आदित्य को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन इतना साफ था, झलक अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे वो समझता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या इतना बड़ा हो गया है। झलक अपनी सफाई भी तो नहीं दे रही थी कि वो गलत नहीं है। वो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि उसे उस बात के बाद बहुत बुरा लगा था। आखिर वो समझे तो समझे क्या? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो सच में खुद को पागल सा महसूस कर रहा था। फिलहाल आदित्य बात ही कर रहा था कि हाथ में दो बियर की बॉटल लेकर आर्यन सीधा झलक के सामने आ गया। झलक को देखते हुए बोला, ये लो चैंप, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं बियर पार्टी शाम को करना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज एक बार ये बियर पीकर मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आदित्य आर्यन के पागलपन भरी बातें सुनकर पूरी तरह सन रह गया था। वो सोच रहा था कि कोई भी संस्कारी लड़की भला बियर कैसे पी सकती है। उसका दिमाग इस बात पर तेजी से चल रहा था। तभी झलक ने आगे बढ़कर आर्यन के हाथ से बियर की बॉटल ली और अपने होठों से लगा ली। ये दृश्य देखकर आदित्य की आंखें और भी बड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो आज झलक के आसपास थोड़ा और खड़ा रहा तो सच में पागल हो जाएगा, शायद उसे पागलखाने में भर्ती करवाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी दूसरी बियर की बॉटल आगे बढ़ाकर झलक से चीयर्स किया और उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू यार, थैंक यू मुझे मेरी दोस्त वापस देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी बेरंग हो गई थी। जैसे ही आर्यन ने ये बातें कहीं, आदित्य को लगा कि अगर वो थोड़ी देर और यहां खड़ा रहा तो सच में अपना मानसिक संतुलन खो देगा। वो तुरंत झलक को देखते हुए बोला, मिस झलक, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मैं यहां और नहीं रुक सकता, सॉरी, सच में सॉरी। इतना कहकर वो बिना देर किए वहां से निकल गया। आर्यन चौंक कर बोला, एक मिनट, आपने क्या कहा? ये कहां जा रहा है? ये तो आपकी कंपनी का। झलक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर घूरते हुए बोली, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। किसकी कंपनी है और किसकी नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता धीरज रायचंद को पता चल गया कि तुम इस वक्त यहां मेरे साथ हो तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हें तुम्हारी जायदाद से बेदखल कर देंगे और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली तुम्हारी बहन मीरा रायचंद के नाम हो जाएगी। ये सुनकर भी आर्यन मुस्कुराया, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम जानती हो उस वक्त अस्पताल में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन मेरे पिता ने मुझे रोक लिया। झलक, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से एक भी रात चैन से नहीं सो पाया हूं। ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। आज तुमसे मिलकर, तुम्हारी माफी पाकर सच में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तुमने मुझे जीना सिखाया था और मैं तुम्हें ही भूल गया। मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। झलक ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, तुम्हें मुझे किसी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुमने जो किया अपनी जगह सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद वही करती। जिस इंसान पर पूरी दुनिया इल्जाम लगा चुकी हो, जिसके खिलाफ समाज खड़ा हो चुका हो, उसके साथ खड़े होने वाला भी लोगों की नजरों में कटघरे में आ जाता है। तुमने अपने बिजनेस माइंड से जो फैसला लिया वो गलत नहीं था। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। झलक की ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पता नहीं क्या कहूं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। कुछ तो है जो अजीब सा लग रहा है। झलक ने फिर गहरी सांस ली, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें माफी मिल चुकी है, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। आर्यन तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने यहीं एक होटल बुक किया है, कुछ दिन यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ पुराने दिन फिर से जीऊंगा। मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जैसे पहले करते थे। दोनों दोस्त बियर पियेंगे, गाने गाएंगे और फिर से वही पुराना समय वापस। जैसे ही आर्यन इस तरह की बातें कर रहा था, झलक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें सारी इमोशनल बातें यहीं खत्म कर देनी चाहिए और जाकर अपने घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर परेशान हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो यहां तक आ जाए। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। पहले सिद्धार्थ खुराना तुम्हारी जिंदगी में आए, उसे भी जैसे तैसे मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार और पूरे खुराना परिवार को लगता है कि आदित्य राणा तुम्हारा कोई शुगर डैडी है। ये सुनकर झलक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा और बोली, किसी के कुछ भी सोचने या कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें भी यही लगता है कि आदित्य राणा मेरा कोई शुगर डैडी है तो तुम भी यही सोच सकते हो। सच में मुझे तुम्हारी सोच से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आर्यन ने तुरंत सफाई देने वाली शक्ल बना ली। अरे यार, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। तुम्हारी माफी मिल गई, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम किसी को भी क्या समझो या लोग तुम्हारे बारे में क्या कहें, मुझे सिर्फ मेरी प्यारी सी पुरानी दोस्त वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर झलक को सच में हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और बोली, मिस्टर रायचंद आपको अब जाना चाहिए, जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम कल मिलते हैं ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम से निकलना है। आर्यन तुरंत बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कोई जरूरी काम दिया होगा, इसीलिए तुम जा रही हो, ठीक है जाओ, लेकिन मैं कल यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, या फिर शाम को कहीं और मिल लेते हैं, तुम कोई एड्रेस दे दो मुझे। झलक ने सोचकर कहा, आज तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, आज जरूरी काम है। हाँ कल मिल सकते हैं, यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है, वहीं मिलते हैं ठीक है। झलक ने बेहद बिंदास अंदाज में आर्यन को उस रेस्टोरेंट में आने का न्योता दे दिया। आर्यन भी खुशी खुशी वहां से चला गया। आर्यन के जाते ही झलक का चेहरा एकदम सख्त और डार्क हो गया। वो धीमे से खुद से बोली, अभी वक्त नहीं आया है कि कोई भी मेरा पूरा सच जान सके। मैं जानती हूँ उस वक्त तुमने जो किया अपने पिता के दबाव में किया, लेकिन उस समय तुम्हें फैमिली स्टेटस और नाम की चमक ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए तुम मेरे साथ खड़े नहीं हो सके। भले ही आज तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सोचते हुए वो सीधी वहां से निकल गई। उसे पूरा यकीन था कि आदित्य कहीं और नहीं बल्कि साइट पर ही गया होगा, क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस पर जोरों शोरों से काम चल रहा था। बिना देर किए झलक ने अपनी कार घुमाई और साइट की ओर बढ़ गई। जाने से पहले उसने अपने असिस्टेंट को बाकी सारा काम सौंप दिया था।
फिलहाल दूसरी ओर बलबीर बेहद गुस्से में बैठे हुए थे। दिग्विजय जी वहां काए तो थे, लेकिन बिना कुछ खास बात किए वापस भी चले गए। उधर कबीर की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे उसके चेहरे की सूजन थोड़ी कम होने लगी थी और दवाइयों के असर से दर्द भी हल्का पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था। जो लड़का हमेशा स्मार्ट और हैंडसम दिखता था, अब सूजे हुए नाकमुंह के साथ बेहद बुरी हालत में नजर आ रहा था। उसने खुद को आईने में देखना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं कितने दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा। गुस्से और अपमान की वजह से वो ढंग से किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। उधर रणविजय का हाल भी गुस्से से बुरा था। भले ही लोगों को लगने लगा था कि आदित्य जरूर झलक का शुगर डैडी होगा, लेकिन झलक का कोई सुराग न मिलना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। ऊपर से सिद्धार्थ खुराना के अचानक गायब होने की खबर ने उसे और ज्यादा बेचैन कर दिया था। वो देर नहीं करना चाहता था, वो पूरी सच्चाई जानना चाहता था। आखिर रातोंरात सिद्धार्थ खुराना कहाँ जा सकता है और झलक कहाँ हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ खुराना झलक के पास पहुंच गया हो और उसने सब कुछ जान लिया हो? रौनक को कितनी भी यातना देने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला था। उसने ये तक नहीं बताया कि उसका बॉस आखिर गया कहाँ है। नैना और उसके भेजे हुए लोग चारों तरफ फैल चुके थे, बस किसी भी तरह झलक का पता लगाना उनका मकसद था। वहीं दूसरी ओर झलक तेजी से ड्राइव करते हुए अपनी साइट पर पहुंच चुकी थी और